समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
आपने ट्यून किया है आकाशवाणी गोल्ड और ये है न्यूज मैगजीन आज सवेरे। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज सवेरे के एक नए अंक के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं नीना अर्कल। नमस्कार नीना।
नमस्कार देवेंद्र, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर इन ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वी विल ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 6th of February। सो लेट अस बिगिन विद द हेडलाइंस फर्स्ट। देवेंद्र
जी, दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। लगभग 60.42% मतदान हुआ है। सबसे अधिक 66.25% मतदान उत्तर पूर्वी जिले और सबसे कम 56.16% मतदान दक्षिण पूर्वी दिल्ली में हुआ। जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हुई उनमें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आतिशी मनीष सिसोदिया और भाजपा के प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, अरविंदर सिंह लवली और रमेश विधूड़ी शामिल हैं। कांग्रेस की ओर से देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित और अलका लांबा इस चुनाव में प्रमुख चेहरे हैं। विधानसभा चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं।
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met SCO Secretary General Nurlan Yermakbayev in Delhi yesterday. Dr. Jaishankar congratulated him on assuming this new responsibility. In a social media post, the External Affairs Minister said they discussed India's work in SCO and building of secure SCO. Dr. S. Jaishankar also had a telephone conversation with Egypt's Foreign Minister Dr. Badr Abdelati. They discussed recent developments in the region and India-Egypt bilateral ties.
जी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र अब विकास के पथ पर अग्रसर है। वे त्रिपुरा सरकार द्वारा 2,800 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा सरकार बिना किसी भेदभाव, सिफारिश या भ्रष्टाचार के पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां प्रदान कर रही है। गृहमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने त्रिपुरा में शांति लाने के लिए 3 समझौते किए हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा में सशस्त्र गुट या तो समाप्त हो गए हैं या फिर समर्पण करके मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अशांति और भ्रष्टाचार में फंसा ये राज्य अब भागीदारी और कल्याण के साथ विकास के मार्ग पर अग्रसर है।
In Jammu and Kashmir, a bamboo workshop under the National Bamboo Mission has been held in Kanjli village, Riyasi district, by the Handicrafts Department. The workshop saw the participation of registered artisans who demonstrated their skills and innovative bamboo craft techniques. Assistant Director Ujjwal Sambyal provided insights into the various artisan societies and self-help groups in the region. The workshop offered artisans a platform to exchange ideas, improve their craftsmanship, and explore new opportunities in the bamboo industry. This initiative supports the government's goal of promoting sustainable livelihoods through eco-friendly crafts and strengthening the bamboo sector in Jammu and Kashmir.
श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आज से भारत रंग महोत्सव की शुरुआत हो रही है जो रविवार तक चलेगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव के रजत जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इस महोत्सव को पहली बार आयोजित कर रहा है। भारत रंग महोत्सव को भारंगम भी कहा जाता है। ये इस वर्ष 28 जनवरी से शुरू है जो भारत, श्रीलंका और नेपाल के 13 शहरों में 16 फरवरी तक चलेगा। एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन विषय पर आधारित इस महोत्सव में रूस, इटली और स्पेन सहित 9 देशों की 200 से अधिक प्रस्तुतियां होंगी। कोलंबो महोत्सव की सूची में हिंदी में ताजमहल का टेंडर और बाबूजी के साथ सिंघल नाटक रोमियो और जूलियट तथा सिंधु किरिली 2 शामिल हैं। एनएसडी की भी 22 सदस्यीय टीम कोलंबो में महोत्सव के दौरान कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी।
France's government survived a no-confidence vote on Wednesday in Parliament, clearing the way for the adoption of 2025 budget. Earlier, Prime Minister François Bayrou had invoked special constitutional powers to secure approval of the budget bill without a vote by lawmakers, which led to the no-confidence motion. Only 128 lawmakers voted in favour of the motion, far short of the 289 votes, half of the National Assembly's seats, required it to pass. Earlier, both socialists and far-right National Rally lawmakers had announced not to support the motion. Under France's constitution, the motion's failure automatically enacts the 2025 budget into law.
Aur ab khabrein Mahakumbh se. प्रयागराज महाकुंभ में आज जनजाति सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसमें देशभर से 15,000 से अधिक आदिवासी भाग लेंगे। 6 दिवसीय उत्सव में प्रतिभागी जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जनजाति सांस्कृतिक समागम के तहत आज महाकुंभ में युवा कुंभ का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के संगठन मंत्री अतुल जोग ने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय राज्य जनजातीय कार्य मंत्री दुर्गादास उइके करेंगे।
इस युवा कुंभ में देश के सभी राज्यों से 8,000 से भी अधिक युवा प्रयागराज में पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम में आदरणीय और श्रद्धेय अवधेशानंद गिरी जी उपस्थित रहेंगे। उनके ही आश्रम के कैंपस में ये कार्यक्रम रहेगा।
इस युवा कुंभ के दौरान अलग अलग प्रदेशों के 25 युवाओं को सम्मानित किया जाएगा, जो जनजातीय समाज के लोगों के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। इस जनजातीय सांस्कृतिक समागम के दौरान देश भर के 120 सांस्कृतिक नृत्य दल अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा सभी लोग त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
And now, Devendra, after Mahakumbh reports, move on to sports roundup.
Right.
Moving on to the world of sports, in men's cricket, the first match of the 3-match ODI series between India and England will be played at the Vidarbha Cricket Association Stadium in Nagpur, Maharashtra, this afternoon. We have more from our correspondent.
Both India and England will test their ODI performances before going into the Champions Trophy later this month. Jos Butler-led England team is largely similar to what they had picked for T20 series, while the men in blue have experienced Rohit Sharma back as skipper and star batter Virat Kohli has also returned to the side. Next we have from the World Table Tennis Singapore Smash, where India's number one men's doubles duo of Manav Thakkar and Manush Shah will face 4-seeded French pair of Florian Borsod and Esteban Dor in the quarterfinals today. Moving on to the Mumbai Open Tennis, India as Prarthana Thombare will be in action in the women's doubles quarter-final at Cricket Club of India in Mumbai today. While in the women's singles round of 16, several Indian players including Ankita Raina, Shrivali Rashmika, Bhamidipati and Maya Rajeshwaran Revati will lock horns at the court. Last we have from the Indian Super League ISL football, where Mohan Bagan Super Joint became the first team to qualify for the playoffs, beating Punjab FC by 3-0 in Kolkata last night. Today FC Goa will host Odisha FC at the Jawaharlal Nehru Stadium in Goa. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
आकाशवाणी गोल्ड पर आप सुन रहे हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे, और अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरों का। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु से क्या खबरें हैं नीना के पास।
Yes, Devendra, starting with news from Chennai. A Lufthansa flight which landed with 174 passengers from Frankfurt had to spend another hour in the plane at Chennai airport because of a bomb threat. The aircraft was moved to a corner of the airport for a search by the bomb squad. The threat was received through email and the pilot was informed about it by the air controller as soon as the flight landed at 12:22 p.m. on Tuesday. During the search, passengers were busy filming the bomb squad and calling up family. After safety protocols concluded, according to the aircraft security rules, the bomb squad confirmed the threat to be a hoax and allowed the plane to be moved to its designated bay. Moving on to Bengaluru, Air Commodore S.B. Arun Kumar, Deputy Director General of Karnataka and Goa NCC Directorate, was presented citations by the Directorate of Governor of Karnataka in Bengaluru yesterday. The citations were presented to honour the regional NCC Directorate that had won the prestigious PM banner at the PM rally held in New Delhi recently. The PM banner is a highly coveted award that recognises excellence in discipline, drill and overall performance. During the ceremony held in Raj Bhavan, 124 Republic Day contingent cadets, officers and their families were present. The governor felicitated the NCC cadets and officers on this occasion. He acknowledged the remarkable performance of the Karnataka and Goa NCC Directorate during the Republic Day celebrations in New Delhi. Now here's news from Hyderabad. Chief Minister Revanth Reddy announced a cash reward of 1 crore rupees for under-19 women cricketer Gungadi Trisha and 10 lakh rupees to Dhruti Kesari, a member of the under-19 World Cup team from Telangana. Under-19 World Cup team head coach Nausheen and trainer Shalini are being given 10 lakh rupees each cash prize. Gungadi Trisha paid a courtesy call on Chief Minister Revanth Reddy at his Jubilee Hills residence in Hyderabad yesterday. The Chief Minister congratulated Trisha for her outstanding performance in the recently held Under-19 Cricket World Cup in Kuala Lumpur in Malaysia. Chief Minister wished Trisha to excel in the field of cricket and bring more laurels to country in future. And now from news from Delhi, Mumbai, Kolkata, we move over to Devendra Sapati.
जी नीना, दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेला जारी है. देश भर से बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी मेले में पहुंच रहे हैं. इस वर्ष मेले की थीम है हम भारत के लोग, जो भारत गणराज्य के 75 वर्ष पूर्ण होने के उत्सव को विशिष्ट रूप से दर्शा रही है. मेले में भारत के अलावा फ्रांस, कतर, यूएई, सऊदी अरब, कोलंबिया और रूस समेत 50 देशों के लेखक और वक्ता शामिल हो रहे हैं. विश्व पुस्तक मेले में शैक्षणिक किताब, उपन्यास और प्रसिद्ध हस्तियों के जीवन पर प्रकाशित किताबों के स्टॉलों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है. बच्चों के लिए विशेष पवेलियन भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की तरफ चलें, तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने कल गिलियन बैरे सिंड्रोम GBS के 4 नए मामलों की जानकारी दी है. राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 170 हो गई है और 5 संदिग्ध मरीजों की मौत की खबर है. कुल संक्रमितों में 62 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, 61 ICU में है और 20 वेंटिलेटर पर उपचार प्राप्त कर रहे हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि गढ़चिरौली जिले को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए डॉक्टर अभय वंग के नेतृत्व वाली टास्क फोर्स द्वारा तैयार की गई योजना इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू की जाएगी. उन्होंने कहा कि आदिवासी विकास विभाग को इस पहल के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्देश दिया गया है. महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार ने घोषणा की है कि राज्य का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यूनेस्को के साथ साझेदारी करेगा और इस वर्ष क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के अवसर पर राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इस पहल के अंतर्गत छात्रों, शोधकर्ताओं और उद्योगों से जुड़े पेशेवरों के लिए सम्मेलन, कार्यशालाएं और व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे. महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने घोषणा की है कि राज्य सरकार इस वर्ष बाल, युवा और महिला साहित्य सम्मेलन का आयोजन करेगी. मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय में आयोजित मुंबई पुस्तक महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में बोलते हुए श्री सामंत ने छात्रों से मोबाइल के उपयोग के साथ साथ किताबें सुनने की सुविधा का उपयोग करने का भी आग्रह किया. श्री सामंत ने कहा कि रत्नागिरी में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया जाएगा. और चलें कोलकाता, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के न्यू टाउन में विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर में 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने उद्योग के अनुकूल नई नीतियों का उल्लेख करते हुए निवेशकों से राज्य में निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने उद्योग जगत में निवेश से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय औद्योगिक समन्वय समिति के गठन की भी घोषणा की। उद्घाटन सत्र के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भूटान के मंत्री योसन फुनसो सहित 40 देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधि और 25 राजदूत तथा उच्चायोग के सदस्य उपस्थित थे। उद्योगपति मुकेश अंबानी, सज्जन जिंदल, संजीव गोयनका और फिक्की अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने राज्य में नए निवेश की घोषणा की है।
Dear listeners, here's weather report from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Bengaluru is expected to have fog or mist would occur in early morning. The minimum temperature was 16 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius. And now, Devendra, what do we have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
Jee. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है क्योंकि धूप अच्छी रहेगी और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में हल्के बादल आ सकते हैं, हालांकि बारिश की कोई संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया, दिन में पारा 34 डिग्री रहने की संभावना है और कोलकाता में सुबह के समय धुंध रही और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। तापमान 18 और 28 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं, इतिहास में दर्ज आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र अपने श्रोताओं के लिए करते हैं। आज है 6 फरवरी 2025 का दिन। आज ही के दिन वर्ष 1952 में एलिजाबेथ द्वितीय ने ग्रेट ब्रिटेन की राजगद्दी संभाली थी। उन्होंने वर्ष 2002 में ब्रिटिश के राज सिंहासन पर अपने 50 वर्ष पूरे किए थे।
इन 1954 कश्मीर असेंबली एक्सेप्ट्स रीयूनिफिकेशन विद इंडिया। In 1959, Ann Chandy was appointed the first woman judge of Kerala High Court. In 1937, she became the Munsif. In 1966, Madurai Kamraj University was established.
Apollo 14 के जरिए चांद पर पहुंचे एलन शेपर्ड ने दो दिन तक चांद पर चहलकदमी के दौरान एक गोल्फ क्लब से गोल्फ बॉल को हिट किया और चांद पर गोल्फ खेलने वाले वो पहले व्यक्ति बने और ये घटना हुई थी वर्ष 1971 में, दिन 6 फरवरी का था।
In 1990, Ashok Shandilya of Railways wins the National Billiards Crown. In 1994, World Marathi Chamber of Commerce established. In 1995, India and France decide to set up permanent secretariat in Paris during the Indo-French Joint Business Council in Delhi.
जी, वर्ष 2003 में आज के दिन अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंधी समिति ने रूस के साथ एटमी हथियार संधि का अनुमोदन किया था।
In 2018, one of the world's most powerful rockets, SpaceX Falcon Heavy, was launched.
जी, और आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है और जिनके कार्य विचार आज भी समाज के लिए आईना है। सबसे पहले हम स्मरण कर रहे हैं आजाद हिंद फौज के अधिकारी गुरुबख्श सिंह ढिल्लो का, आज उनकी पुण्यतिथि है। 18 मार्च 1914 को जन्मे गुरुबख्श सिंह ढिल्लो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विश्वास पात्र सेना नायकों में से एक थे। उन्हें सिंगापुर में युद्धबंदी बनाया गया और ब्रिटेन सरकार के विरुद्ध युद्ध के आरोप में गुरुबख्श सिंह के साथ प्रेम सहगल और शाह नवाज खान पर मुकदमा चला और ब्रिटिश सेना ने कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की। इन वीरों पर कोर्ट मार्शल का मुकदमा लाल किले में स्थित अदालत में चला था, इसीलिए इस कोर्ट मार्शल को लाल किला ट्रायल भी कहा जाता है। कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो को सन 1998 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लो का 6 फरवरी 2006 को निधन हो गया था।
निकले हैं वीर जियाले यूं अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने।
हमारा इतिहास ऐसे शूरवीरों की गौरवशाली गाथाओं से भरा हुआ है जिन्होंने अपना रक्त देकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। ऐसे ही एक वीर थे यदुनाथ सिंह। 1947 में पाकिस्तान की ओर से जारी कायराना हमलों को नाकाम करने में भारत के अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 1 फरवरी 1948 को भारत की 50 पैरा ब्रिगेड ने रात को हमला किया था और नौशेरा पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया था। इस संग्राम में दुश्मन को जान और गोला बारूद का बड़ा नुकसान हुआ था और पाकिस्तानी फौज पीछे हट गई थी, लेकिन बौखलाहट में पाकिस्तान ने 6 फरवरी 1948 को फिर से हमला कर दिया। इसमें भारत के 4 सैनिक घायल हो गए। अकेले बचे नायक यदुनाथ ने घायल सिपाही की बंदूक ले ली और लगातार गोलियों की बौछार करते रहे। बाहर आ गए, उन्हें मदद आने तक अकेले ही दुश्मन का मुकाबला करना था। वो डटे रहे, पीछे हटे नहीं। इसी दौरान दुश्मन की गोलीबारी में भारत माता का ये वीर अपना सब कुछ गंवा माँ भारती के आंचल में लिपटकर सदा के लिए सो गया। यदुनाथ सिंह की परम वीरता के लिए वर्ष 1948 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया।
मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था।
आज जयंती है खान अब्दुल गफ्फार खान की, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी में पख्तूनों के सबसे अग्रणी और लोकप्रिय नेता थे, जो महात्मा गांधी के अनुयायी बने और सीमांत गांधी कहलाए। विनम्र गफ्फार ने सदैव स्वयं को एक स्वतंत्रता संघर्ष का सैनिक मात्र कहा, परंतु उनके प्रशंसकों ने उन्हें बादशाह खान कहकर पुकारा। गांधी जी भी उन्हें ऐसे ही संबोधित करते थे। राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेकर उन्होंने कई बार जेलों में घोर यातनाएं सही, फिर भी वे अपनी मूल संस्कृति से विमुख नहीं हुए।
सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बागबन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
Today we remember Carl Wilson. He was an American musician who co-founded the Beach Boys. He was their lead guitarist, the youngest sibling of bandmates Brian and Dennis, and the group's de facto leader in the early mid-1970s. Following his lead vocal performance on God Only Knows in 1966, Carl was increasingly lead vocalist for the band God Only Knows. Here's the song for you. Robert Marley, Bob Marley, was a Jamaican singer and songwriter. We celebrate his birthday today. Considered one of his pioneers of reggae, his musical career was marked by blending elements of reggae, ska and rock steady, as well as forging a smooth and distinctive vocal and songwriting style. Marley's contributions to music increased the visibility of Jamaican music worldwide and made him a global figure in popular culture for over a decade. Born in Nine Mile, British Jamaica, Marley began his professional musical career in 1963 after forming Bob Marley and Wailers. Here's Is This Love from the legend Bob Marley.
श्रोताओं, भारतीय सिनेमा के अपने समय के सुप्रसिद्ध पार्श्व और गजल गायक भूपिंदर सिंह की भी आज जयंती है। उनके गाए कई गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं और फिल्म मौसम के गीत दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन आम जीवन का गीत लगता है। उनकी आवाज में एक ठहराव था जो श्रोताओं को गीतों के हर एक शब्द से जोड़ता और उन शब्दों को महसूस कराता था। भूपिंदर सिंह का जन्म पंजाब के अमृतसर में 6 फरवरी 1940 को हुआ था। लगभग 82 वर्ष की उम्र में इस महान गायक ने 18 जुलाई 2022 को मुंबई में अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी आवाज में गाए गीत सदैव सदैव संगीत प्रेमियों के दिलों में बसते रहेंगे।
WAXL Rose, raised as William Bruce Bill Bailey, born February 6, 1962, is an American singer, songwriter, record producer, and musician. He is the lead vocalist of the hard rock band Guns N' Roses and has been its sole constant member since its inception in 1985. Here's Sweet Child O' Mine from the same rock band.
God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, the life I'd still go on, believe me, the world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
आज जन्मदिन है रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी का, जिन्हें हम और आप प्रदीप के नाम से जानते हैं। कवि प्रदीप हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी फिल्म जगत में भी एक लोकप्रिय नाम रहे। देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों की रचना कर भारत के हर जनमन की आंखों में उन्होंने पानी ला दिया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि के लिए ये गीत लिखा था। भारत रत्न लता मंगेशकर द्वारा 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में गाए गए इस गीत का सीधा प्रसारण किया गया था। शिक्षा पूर्ण करने के बाद इलाहाबाद के साहित्यिक वातावरण में कवि प्रदीप की अंतश्चेतना में दबे काव्यांकुरों को फूटने का पर्याप्त अवसर मिला। यहां उन्हें हिंदी के अनेक साहित्य शिल्पियों का स्नेहिल सानिध्य भी मिला। निराला जी ने माधुरी पत्रिका में लिखा, आज जितने कवियों का प्रकाश हिंदी जगत में फैला है, उनमें प्रदीप का प्रकाश अत्यंत उज्ज्वल और स्निग्ध है। हिंदी के हृदय से प्रदीप की दीपक रागिनी कोयल और पपीहे के स्वर को भी परास्त कर चुकी है। कवि प्रदीप ने अपने कई गीतों को अपना स्वर देकर अमर किया था। और श्रोताओं, ये भी एक संयोग है कि प्रदीप के देशभक्ति गीत को अमर बनाने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आज पुण्यतिथि है। हम उनका भी स्मरण कर रहे हैं। लता मंगेशकर की मधुर आवाज ने लगभग 6 दशकों से भी अधिक समय तक संगीत की दुनिया को समृद्ध किया था। भारत रत्न लता जी ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए। उन्हें फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला। मध्य प्रदेश के इंदौर में 28 सितंबर 1929 को दीनानाथ मंगेशकर के घर आई इस नन्ही परी ने दुनिया को अपनी आवाज का दीवाना बना दिया। संगीत की दुनिया, संगीत की दुनिया में जो बुनियादी शिक्षा थी, इसकी शुरुआत घर से हुई। शिक्षा पिता दीनानाथ मंगेशकर से मिलनी शुरू हुई। भारत की आजादी के साल 1947 में एक फिल्म आई थी आपकी सेवा में, जिसमें एक गीत गाकर उन्होंने संगीत की दुनिया में अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। लता मंगेशकर ने अनिल विश्वास, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन, एसडी बर्मन, आरडी बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, सी रामचंद्र सहित अपने समय के सभी बड़े संगीतकारों के सुरों को अपनी आवाज से सजाया था। अनगिनत फिल्मों को अपने गाए गीतों से लोकप्रिय और अमर बनाने वाली लता मंगेशकर अपनी आवाज के चलते सदा के लिए कला जगत में अमर हो गई।
मिल गया था
और श्रोताओं, इस खूबसूरत गीत के साथ ही अब हम चाहेंगे आज सवेरे यहीं समाप्त करने की अनुमति, लेकिन आप बने रहिए आकाशवाणी गोल्ड के साथ।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात, आवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।